मेरा बच्चू ऐसा नहीं करेगा।
लाला चाची मुझे बचाओ।
रूपा को छोड़ दे, मैं तुझे जान से मार डालूंगी।
तू मुझे नहीं मार सकती, तू मेरी माँ है।
मैं एक औरत हूँ।
मैं तेरा बेटा हूँ।
रूपा सारे गांव की बेटी है, वो मेरी लाज है। बिरजू मैं बेटा दे सकती हूँ, लाज नहीं दे सकती।
तू मार सकती है तो मार, मैं भी अपनी कसम नहीं तोड़ूंगा।
ये डायलॉग है फिल्म मदर इंडिया का। इस फिल्म को 1958 में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। इस फिल्म का नाम सुनते ही आपके दिमाग में पहला चेहरा नरगिस दत्त का ही आता है। नरगिस को दो नाम दिए गए थे। उनकी मुस्लिम माँ जद्दनबाई उन्हें फातिमा के नाम से पुकारती थी, जबकि उनके हिंदू पिता ने उन्हें तेजस्वरी उत्तमचंद मोहनचंद नाम दिया था। संजय दत्त की जीवनी लिखने वाले यासिर उस्मान बताते हैं।
जद्दन भाई उनकी माँ थी। शी वॉज द मोस्ट प्रोलिफिक लेडी इन हिंदी सिनेमा उस वक्त, क्योंकि वो फिल्में बनाती थी, प्रोड्यूस करती थी, डायरेक्ट करती थी, उसमें एक्ट करती थी, उसका म्यूजिक देती थी, उसमें सिंगर थी, मतलब वो सब कुछ करती थी। शो मैन तो हम राज कपूर को बाद में कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है शो वुमन अगर किसी का खिताब तो वो जद्दन भाई को। और फिर उस घर में उस दौर के जितनी भी बड़ी शख्सियत थी, चाहे वो कमाल अमरोही रहे हों या के आसिफ से लेकर दिलीप कुमार, बलराज सानी, तो सब वो आना जाना था। तो जब नरगिस बड़ी हो रही थी तो अपने आसपास ये माहौल देख रही थी। वो जो मरीन ड्राइव में उनका शटो मरीन बिल्डिंग हुआ करती थी उसमें, तो उस बैकग्राउंड से आके 5 साल की उम्र से फिल्मों में काम करने लगी थी। तलाशे हक से शुरू किया और फिर कई फिल्में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट की। और जब 14 साल की हुई तो महबूब खान की फिल्म थी तकदीर, उससे डेब्यू किया उन्होंने। और उस दौर में इंग्लिश स्पीकिंग एक्ट्रेस बड़ी कम हुआ करती थी, क्योंकि बहुत अच्छी फैमिली से आती नहीं थी। तो वहाँ से शुरुआत करके जिस मकाम पे गई, सुपरस्टार थी, बहुत बड़ी फीस लेती थी।
काश मेरा ये ख्वाब सच्चा हो।
तुम्हारे ख्वाब की ताबीर तुमको मिल गई।
आप यहाँ?
तुमने भगवान से प्रार्थना की थी ना, उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया।
देखिए संभल कर, कहीं गिरना पड़ेगा।
इश्क के मैदान में लड़ने वाले शह सवार गिरने से नहीं डरते।
लेकिन मुझे डर मालूम होता है।
ये डर जो है ना, ये तुम्हारी मोहब्बत की निशानी है।
हुमायूं, मेला, अनोखा प्यार जैसी फिल्मों में काम करने के बाद नरगिस को राज कपूर के साथ आग फिल्म मिली। राज कपूर और नरगिस के पहली बार मिलने की भी एक दिलचस्प दास्तान है।
राज कपूर उस वक्त सिर्फ पृथ्वीराज कपूर के बेटे के तौर पर जाने जाते थे और असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जब अपनी फिल्म बनाने का मौका आया तो राज कपूर ढूंढ रहे थे स्टूडियो, उनको कोई ज़रूरत थी। तो उस वक्त फेमस स्टूडियोज थे, महालक्ष्मी रेसकोर्स के पास हुआ करते थे। वहाँ पर उनको पता चला कि जद्दन भाई अपनी फिल्म रोमियो और जूलियट की शूटिंग कर रही हैं, तो वो पहुँच गए कि मैं भी देख लूँ फेमस स्टूडियो। वो वहाँ नहीं मिली तो वो जद्दन भाई के घर पहुँचे, जो बेल बजाई तो नरगिस निकली। और वो जो फेमस सीन है बॉबी का, कि उस वक्त पकौड़े तल रही थी नरगिस और उन्होंने अपने बाल माथे से हटाए तो बेसन लग गया, तो वो सीन राज कपूर को याद रहा। वो पहली मुलाकात थी। तो राज कपूर तो बड़े ड्रीमी थे उस सीक्वेंस के बारे में, कि इतने साल बाद, 27 साल बाद बॉबी में उसको हूबहू उतार दिया डिम्पल के साथ। जो नरगिस का वर्जन है वो बड़ा कॉमिक है। अपनी एक दोस्त को बताया नीलम को, कि एक नीली आंखों वाला मोटा पिंकी आया था।
राज कपूर के साथ नरगिस की जोड़ी 10 सालों तक चली। उन्होंने आरके फिल्म्स की 6 और कुल 16 फिल्मों में साथ काम किया। नरगिस दत्त पर बहुचर्चित किताब डार्लिंग जी लिखने वाली किश्वर देसाई बताती हैं।
19 साल की उम्र में ये उनका पहला बॉयफ्रेंड था। उनकी मदर की अभी डेथ हुई थी हाल ही में और वो अपनी मदर के बहुत करीब थीं। शायद वो चाहती थीं कोई उनका हमसफ़र हो या कोई उनके साथ कोई कॉन्फिडेंट हो जो उनकी बातें उनको समझ सके, क्योंकि घर में काफ़ी सख्ती से उनके जो भाई थे वो पेश होते थे और वो हर टाइम उनको कंट्रोल करना चाहते थे। राज कपूर एक बहुत टैलेंटेड एक्टर थे जैसे नरगिस थी, और बहुत गुड लुकिंग। तो मैं समझती हूँ कि शायद उस ज़माने में इस तरह का इंसान, नीली नीली आंखें, बहुत खूबसूरत, और आपके सामने आता है, कहता है कि मैं आपका हमसफ़र बनना चाहता हूँ, शायद वो आगे पीछे कोई सोचने की कोई बात ही नहीं थी। हालांकि वो शादीशुदा तब भी थे। और उनके बच्चे भी थे, पर नरगिस ने एक तरह से एक छलांग ले ली इस दुनिया में कि मैं भी इनके साथ रहकर शायद वो प्यार मोहब्बत जो बहुत मिस कर रही थी उनको मिला। और आप उनकी फिल्में भी देखें जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बनाए, ये साफ जाहिर होता है कि इनकी एक रिलेशनशिप है, जिस तरह से एक दूसरे को देखते हैं। ये बात उस हद तक भी पहुंच गई जब वो बाहर की फिल्में साइन करने से मना उन्होंने करना शुरू कर दिया कि मैं राज कपूर के साथ ही काम करूंगी। वो खुद कहते थे कि कृष्णा जी जो उनकी वाइफ हैं वो मदर हैं हमारे बच्चों की, पर जो नरगिस है वो मदर है हमारी फिल्मों की।
दम भर जो उधर मुंह फेरे वो चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर।
लेकिन धीरे धीरे इस रिश्ते में दरार आने लगी, क्योंकि राज कपूर शादीशुदा थे जबकि नरगिस पारिवारिक मूल्यों में यकीन करती थी।
जब 10 साल बीतने लगते हैं तो आप समझते हो कि वो खुद, क्योंकि वो फैमिली लाइफ चाहती थी और वो देख रही थी कि उनकी कोशिश के बावजूद ये रिलेशनशिप कुछ और नहीं बनने वाला था, क्योंकि उस दौरान राज कपूर जी के और भी बच्चे हुए, तो वो समझने लग गई कि खुद भी उनकी रिलेशनशिप अपनी बीवी के साथ भी चल रही है और हमारे साथ भी चल रही है। तो इट इज़ पॉसिबल दैट समवेयर नरगिस वॉज लिटिल हार्ट ब्रोकन और वो समझती थी कि अब मुझे अपना खुद ही कुछ करना पड़ेगा, और तब वो थोड़ा विद्रोह करने लग गई राज कपूर से।
इस बीच नरगिस दत्त ने महबूब खां की फिल्म मदर इंडिया साइन की, जिसमें नए नए फिल्मों में आए सुनील दत्त को उनके बेटे की भूमिका मिली। शूटिंग के दौरान सेट पर आग लग गई और नरगिस को आग की लपटों ने घेर लिया। सुनील दत्त अपनी जान पर खेलकर नरगिस को आग से बचा कर लाए।
एक सीन आता है, हेस्टैक्स हैं सब जगह पे, क्योंकि गांव का सीन है और उसमें वो मदर का रोल अदा कर रही हैं और उनका बेटा है बिरजू जो सुनील दत्त था, और आग लग जाती है, पर हवा इस तरह से चली उस दिन कि वो हेस्टैक की जो आग थी और बढ़ गई। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उस आग में वो कूदे और उनको रेस्क्यू करें। सुनील दत्त आग में कूद जाते हैं और उनको रेस्क्यू करके उनको उठा के उधर से निकाल लेते हैं। अब ये एक बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि सुनील दत्त खुद बहुत अच्छे गुड लुकिंग नौजवान पर नए एक्टर थे। इतना बड़ा रिस्क लेना, यू नो फेस इज योर फॉर्च्यून कहते हैं, अपने बारे में नहीं सोचना और आग में कूद के और इनको रेस्क्यू करना, वो खुद भी जल गए थे। तो इसीलिए नरगिस ने पहली बार ये महसूस किया कि कोई इंसान मुझे अपने आप से ज्यादा वैल्यू कर रहा है।
दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा।
इस बीच नरगिस दत्त राज कपूर से अपने बचे खुचे रिश्तों को भी समाप्त कर रही थी।
राज कपूर की हाइट छोटी थी, 5'7" की हुआ करती थी, तो जब नरगिस उनके साथ जाती थी पार्टीज में या प्रीमियर्स में या एक्टिंग भी करती थी तो वो हील नहीं पहनती थी उनके बराबर दिखने के लिए। अचानक नरगिस ने हील पहनना शुरू कर दी तो राज कपूर कहते हैं कि एक दिन वो मुझसे मिलने आई तो हील पहनी हुई थी ऊंची ऊंची, तो मैं उसकी हील को 20 मिनट तक घूरता रहा। फिर मदर इंडिया की शूटिंग चल रही थी जब गुजरात में, तो वहां से उनका ड्राइवर आया, बोले बीबी जी ने सैंडल मंगवाए हैं और हारमोनियम मंगवाया है। तो राज कपूर कहते हैं कि तब मैं समझ गया कि उसकी जिंदगी में कोई ऊंचे कद का शख्स आ गया है। और सुनील दत्त 6 फुट के थे।
11 मार्च 1958 को नरगिस और सुनील दत्त की आर्य समाज रीति रिवाजों से शादी हो गई। शुरू में शादी को गुप्त रखा गया क्योंकि मदर इंडिया के निर्देशक महबूब खां का मानना था कि इससे उनकी फिल्म को प्रतिकूल प्रचार मिलेगा, क्योंकि इस फिल्म में वो दोनों माँ और बेटे की भूमिका निभा रहे थे। जब इन दोनों की शादी हुई तो नरगिस अपने करियर के पीक पर थी जबकि सुनील दत्त अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे।
शैटू मरीन में उनकी लाइफस्टाइल बहुत आलीशान लाइफस्टाइल थी, गाड़ियाँ थी, नौकर, ये वो। शादी के बाद क्योंकि ये स्ट्रगलिंग एक्टर था और वो चाहता था कि जहाँ मैं रहूँ वहीं मेरी बीवी रहेंगी सुनील दत्त, तो वहाँ टूटा फूटा फर्नीचर, उसकी नीस याद करती हैं कि जो कप था फिर सॉसर नहीं था, जो प्लेटें थी सब टूटी फूटी, कोई पलंग पड़ा था वो भी टूटा हुआ, और 4 फ्लोर अप था, लिफ्ट नहीं थी, उनका एक बड़ा सा कोई कुत्ता था उसको वॉक कराने के लिए 4 फ्लोर नीचे जाओ 4 फ्लोर अप जाओ, पर वो कभी घबराई नहीं और इतनी खुश ये एक रिमार्केबल बात है, जो भी उनको याद करते हो जमाने के कहते हैं कि इतना खुश उन्होंने नरगिस को कभी नहीं देखा।
प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल,
कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहां मंजिल।
सुनील और नरगिस दत्त के तीन बच्चे पैदा हुए, नम्रता, प्रिया और संजय दत्त। अपने सबसे बड़े बेटे संजय दत्त के लिए नरगिस के मन में विशेष अनुराग था।
संजय इकलौते बेटे थे और नरगिस के लिए सब कुछ थे। नरगिस ने अगर जिंदगी में शायद किसी से भी सबसे ज्यादा प्यार किया तो वो राज कपूर और सुनील दत्त नहीं है, संजय दत्त थे। जब उन्होंने देखा कि जो फिल्मी माहौल है उसमें वो खराब हो रहे हैं, 5-6 साल की उम्र में सिगरेट शुरू कर दी है। इंदिरा गांधी के करीब थी नरगिस। इंदिरा गांधी से उन्होंने पूछा कि कहाँ क्या करना चाहिए उनको इस माहौल से अलग करने के लिए, तो इंदिरा जी ने उनको कहा कि तुम इसको बोर्डिंग स्कूल भेज दो। तो लॉरेंस स्कूल सनार फाइनल हुआ जहाँ पर उनको भेजा गया। वहाँ पर संजय गए तो ये था कि नरगिस और सुनील दत्त का बेटा है, तो आमतौर पर बोर्डिंग स्कूल में जब आप जाते हैं तो ये दिखाने के लिए कि हम हर किसी से बराबरी का सलूक करते हैं और बड़े स्टार का बेटा है तो क्या हुआ, उनको ज़्यादा पनिशमेंट्स भी दिए गए।
नरगिस के लाड़ ने संजय दत्त को बिगाड़ दिया और शुरू से ही उनका ध्यान उन चीज़ों की तरफ चला गया जिस तरफ उन्हें नहीं जाना चाहिए था। नम्रता और प्रिया दत्त अपनी किताब मिसेज एंड मिस्टर दत्त में लिखती हैं।
एक बार जब डैड कश्मीर में शूटिंग कर रहे थे, मेरी माँ नरगिस और संजय उनसे मिलने वहाँ गए। माँ का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए संजय जिद करने लगे कि वो सिगरेट पीना चाहते हैं। संजय याद करते हैं, मैं इतना छोटा था कि माँ मुझ पर बहुत नाराज हो गई, लेकिन जब डैड शूटिंग के बाद आए तो उन्होंने कहा अगर ये सिगरेट पीना चाहता है तो इसे पीने दो। उन्होंने एक सिगरेट सुलगाई और अपने मुंह में लगा कर कहा मेरी तरह कश लो। फिर उन्होंने सिगरेट मेरी तरफ बढ़ा दी। उनका ख्याल था कि मेरा दम घुटने लगेगा और मैं सिगरेट फेंक दूंगा, लेकिन मैं पूरी सिगरेट पी गया। उस समय मैं 6 साल का रहा हूंगा।
उसी दौरान जब संजय दत्त सनावर जा रहे थे तो उन्हें पता चला कि मशहूर लेखक खुशवंत सिंह का घर स्कूल के निकट कसौली में है। बाद में खुशवंत सिंह ने अपने कॉलम में लिखा,
नरगिस और सुनील दत्त अपने बेटे के स्कूल के फाउंडर्स डे समारोह में भाग लेना चाहते थे। होटल में रहने के बजाय उन्होंने मेरी दोस्त फेमिना के संपादक गुलशन एविंग से पूछा, क्या वो कसौली में मेरे बंगले में एक रात रह सकते हैं। हम दोनों की मुलाकात तय हुई। नरगिस मुझसे मिलने टाइम्स ऑफ इंडिया के दफ्तर पहुंची। चपरासी से लेकर संपादक तक हर कोई उनकी एक झलक लेने के लिए टूट पड़ा। हाथ मिलाने के बाद नरगिस ने अपनी फरमाइश मेरे सामने रखी। मैंने छूटते ही कहा, आप मेरे घर में रह सकती हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, और वो ये कि आप मुझे सबको ये बताने का अधिकार देंगी कि आप मेरे बिस्तर पर सो चुकी हैं। नरगिस ने इस पर जोर का ठहाका लगाया और बोली, अपना हाथ लाइए। कसौली से वापस आने के बाद वो मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे फ्लैट पर आई। वापस जाते हुए हम एक पान वाली की दुकान पर रुके। वहां किसी ने जोर से गुजराती में एक फिकरा कसा, सुनील दत्तनी जोरू छे। नरगिस के मुंह से उसके लिए ठेठ पंजाबी में गालियों का जो अंबार निकला वो मुझे अभी तक नहीं भूला है। उसकी खता थी कि उसने नरगिस के लिए जोरू शब्द का इस्तेमाल किया था।
संजय दत्त मुंबई लौटे तब तक उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। इसने नरगिस दत्त को तोड़ कर रख दिया।
वो जब लौट के आए स्कूलिंग पूरी करने के बाद तो ड्रग्स, सारी ड्रग्स जो भी हो सकती हैं वो सारी ड्रग्स उन्होंने की, और नरगिस उनको कहती थी कि एक दिन मुझे मार देगा, ये किन हालातों में ये बर्बाद हो गया।
अच्छा, नरगिस को अंदाजा था इसका या बाद में पता चला?
सिर्फ नरगिस की बात नहीं है रियान साहब, क्योंकि उस वक्त ये सब होता था कि संजय कुछ लेते हैं, कुछ ड्रग्स लेते हैं, कुछ चरस गांजा लेते हैं, लेकिन संजय उस वक्त इंडिया में ड्रग्स आ रही थी नई नई और सब कुछ लेने लगी थी। बाथरूम बंद करके लेते थे तो नरगिस कहती थी कि बाथरूम बंद करके क्यों पड़ा रहता है, है अंदर, तो नरगिस ने जितने लैचेस होते थे जिससे बाथरूम बंद ना कर पाए वो सब हटवा दिए थे। एक बार तो ऐसा वाकया है कि ये लोग डिनर एक साथ करती थी पूरी फैमिली, तो वो ड्रग्स लेके बैठे हुए थे और नींद में उनको ऐसा बेहोशी आई कि वो दाल की थाली में ही गिर गए संजय दत्त। तो बहुत बुरा हाल था और ये लोग समझ नहीं पाते थे, ये लोग बिल्कुल ही शरीफ लोग थे, कि ये क्या ड्रग्स हैं, क्या किया जाए। ये हुआ कि इनको काम से लगाया जाए, तो फिर रॉकी लॉन्च की गई। रॉकी बस थोड़ी सी शूट हुई थी जब ये पता चला कि नरगिस को कैंसर है।
उनको इलाज के लिए अमेरिका के स्लोन कैटरिंग अस्पताल ले जाया गया। उनके पति सुनील दत्त साए की तरह उनके साथ थे।
जिस तरह से सुनील दत्त जी ने उनकी सेवा की उस टाइम जब वो इतनी बीमार थी कि बच्चे खुद उनको पहचान नहीं पा रहे थे, तो और उनको फिर रश किया गया स्लोन केटरिंग अमेरिका में। अब आप देख लीजिए कि सुनील दत्त उनकी हालत किस तरह की होगी। तीन बच्चे हैं, वो इंडिया में है, उन्होंने अभी अभी संजय का करियर भी लॉन्च किया था उनकी पहली फिल्म रॉकी में, उसको भी छोड़ छाड़ के उनको अपनी बीवी के साथ उधर जाना पड़ा, और एक पल के लिए उन्होंने उनका हाथ नहीं छोड़ा, उनका कमरा नहीं छोड़ा। बच्चे खुद याद करते हैं, वो तो खाते भी नहीं थे, मतलब कभी कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं तो सारे टाइम नरगिस के पास। और सुनील दत्त परिक्रमा लेते थे पूरी स्लोन केटरिंग का, और प्रेयर्स करते थे सारे टाइम के, हे भगवान इनको कहीं ना किसी तरीके से इनकी हालत ठीक कर दो। पर वो बीमारी बस बढ़ती ही गई। पूरी जो एक खूबसूरत चुलबुली बहुत ही प्यारी औरत थी, उनको तो सारा उनका जिस्म काला हो गया, बाल झड़ गए, बेड सोर्स हो गए।
इतना बीमार होने पर भी उनके बेटे संजय दत्त लगातार उनके जहन में थे। वहां से उन्होंने संजय के लिए एक संदेश टेप करके भेजा।
मोर देन एनीथिंग संजय, कीप योर ह्यूमिलिटी, कीप योर कैरेक्टर, नेवर शो ऑफ, ऑलवेज बी हम्बल एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट द एल्डर्स। दैट इज द थिंग दैट इज गोइंग टू टेक यू फार एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू स्ट्रेंथ इन योर वर्क।
जब नरगिस की हालत थोड़ी सुधरी तो उन्हें वापस भारत लाया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत फिर खराब हो गई।
उस वक्त बताते हैं कि चूंकि दत्त फैमिली और नरगिस की फैमिली की वो परंपरा भी थी कि गुरुद्वारे भी जा रहे हैं, चर्च भी, मस्जिद भी, मंदिर भी, तो वो सिर्फ दुआओं का सिलसिला जारी रहा 3 महीने बाद। और ये कमाल हो गया, ये मिरेकल था कि 3 महीने बाद वो कोमा से वापस आ गई। लेकिन जब तक वो वापस आई, कीमो का असर था, कुछ कैंसर का, बाइल डक्ट में उनके प्रॉब्लम थी, तो वो एक तो बहुत उनका कॉम्प्लेक्शन वो बिल्कुल डार्क हो गई थी, उनके बाल उड़ गए थे। तो जब वो हॉस्पिटल से अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए जो न्यूयॉर्क में लिया हुआ था, तो सारे शीशे छुपा दिए थे, लेकिन कुछ दिन बाद कहीं से उनको शीशा मिल गया और वो जैसे ही उन्होंने अपनी शक्ल देखी वो फूट फूट के रोई है, ये बहुत रोई कि अब मतलब उनको उस दिन एहसास हुआ कि अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। तो जो उनका इम्यून सिस्टम था, कैंसर फ्री तो वो हो गई थी लेकिन इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गया था, तो किसी तरह डॉक्टर ने कहा कि अब आप इनको ले जाइए, तो उनको लाया गया। तो ये था कि मैं देखना चाहती हूँ कि रॉकी उस वक्त, क्योंकि रॉकी राज खोसला ने पूरी की थी, वो रॉकी देखने गई उनको, जो स्टूडियो उनके घर में हुआ करता था उसमें वो देखने गई, करीब 15 या 20 मिनट की देख पाई, इतनी थकान हो गई कि उनको वापस लाया गया। तो उन्होंने कहा कि इसको प्रीपोन कर दो और मैं चाहती हूँ कि मैं संजय की पहली फिल्म देखकर इस दुनिया से विदा लूँ। तो 8 मई डेट रखी गई।
लेकिन रॉकी रिलीज होने के 5 दिन पहले ही नरगिस दत्त ने दम तोड़ दिया। उन्हें मुस्लिम तरीके से अपनी माँ जद्दनबाई की कब्र के बगल में दफनाया गया। उनकी आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए रॉकी की रिलीज टाली नहीं गई।
गंगा सिनेमा हुआ करता था जहाँ पर रॉकी का प्रीमियर हुआ, तो जाहिर है नरगिस के साथ अभी 4 दिन 5 दिन पहले यह हादसा हुआ था, तो और भी ज़्यादा तादाद में, आमतौर पे तो सुनील दत्त और नरगिस के थे ही इतने ताल्लुकात के आते लोग, लेकिन चूंकि नरगिस चली गई थी तो बिल्कुल 1 इंच की भी जगह नहीं थी। पूरी फिल्म इंडस्ट्री मौजूद थी उस प्रीमियर पे, सब देखना चाहते थे। E15 करके सीट थी जो नरगिस के लिए खाली रखी गई, एक तरफ संजय दत्त बैठे, एक तरफ सुनील दत्त, और वो जब फिल्म चलती भी थी तो वो एक दूसरे की तरफ देखते थे, फिर खाली सीट की तरफ। किसी ने आके पूछा भी कि यार आपके पास एक सीट खाली है, तो सुनील दत्त ने कहा कि नहीं नहीं, दिस इज़ माय वाइफ सीट। जैसे ही फिल्म ख़त्म हुई तो सब लोग खड़े हुए, स्टैंडिंग ओवेशन दिया, बहुत तालियों की गूंज थी, बट संजय दत्त के लिए जो तारीफ और जो मायने रखती थी सबसे ज़्यादा, वो तारीफ उनको नहीं मिली क्योंकि वो जा चुकी थी।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।